अध्याय तीन, जापान का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। पृष्ठ संख्या 22। आधुनिकीकरण क्या है? पूर्व आधुनिक से आधुनिक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को विभिन्न पहलुओं से समझा जा सकता है। आधुनिकीकरण एक ऐसा विशाल विषय है जिसकी विभिन्न प्रकार से अनेक परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में परिभाषा दी जा सकती है। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में एक या एक से अधिक मापदंडों का प्रयोग करके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जाना जा सकता है। कुछ लोग आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो राष्ट्र राज्य को निर्माण का आधार प्रदान करती है। कुछ लोग आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो राष्ट्र राज्य को निर्माण का आधार प्रदान करती है। कुछ दूसरे लोग मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के दर्जे को ही किसी समाज में आधुनिकीकरण का संकेतक मानते हैं। इन दोनों अध्ययन साधनों में पहला राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र से और दूसरा सामाजिक चिंतन के क्षेत्र से है। इसी तरह यदि एक अर्थशास्त्री को आधुनिकीकरण का अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो वह समाज में उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेगा। इस अध्याय में जापान के आधुनिकीकरण उससे संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मुद्दों की और विशेष रूप से पर्याप्त औद्योगिक विकास से ही एक ऐसे समाज अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास को समान क्रियाएं माना गया है, लेकिन यह भी देखा गया है कि केवल औद्योगिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। कुछ अन्य कारकों को भी जिन्होंने जीवन स्तर को प्रभावित किया महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिकीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति भी शामिल है। इसलिए जापानी आधुनिकीकरण का अध्ययन करते समय तीनों आर्थिक, सामाजिक और तथा राजनीतिक क्षेत्रों में हुई प्रगति को ध्यान में रखना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 23। तोकुगावा काल 1600 से 1868 में जापान एक सामंती देश था। जापान के आधुनिकीकरण की बात आमतौर पर तोकुगावा कालोपरांत यानी 1868 के बाद मेजी पुनः स्थापन के बाद ही की जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि तोकुगावा काल प्रभावहीन काल नहीं था और इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के लिए भी कई कोशिशें की गई थी। विभिन्न हानों के बीच मेलजोल पर लगाए गए अनेक प्रतिबंधों के बावजूद वाणिज्य ने भी तोकुगावा काल में उन्नति की थी। फिर भी इस काल की मुख्य विशेषता उसका व्यापक आर्थिक पिछड़ापन ही था। तोकुगावा काल में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वहाँ की राजनीतिक सत्ता शोगुनेट ही थी, क्योंकि उसने यथापूर्व स्थिति स्टेटस बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझी। जिस अचेतन व्यवस्था में समाज को तोकुगावा काल के आरंभ में ही डाल दिया गया था, वह अर्थ, राजनीति व समाज में किसी भी मुख्य परिवर्तन के फलस्वरूप छिन्न भिन्न हो जाती। ऐसा होने से तोकुगावा के निरंतर चल रहे शासन के लिए खतरा पैदा हो जाता। इसलिए तोकुगावा प्रशासन ने उस प्रत्येक कोशिश का विरोध किया जिसके द्वारा समाज में कोई मुख्य परिवर्तन लाने की कोशिश की। इसके बिल्कुल विपरीत मेजी सरकार का ध्यान विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि तथा परिवर्तन की ओर लगा। राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया। इस काल में आर्थिक विकास समझबूझकर तथा बड़े ढंग से हुआ और विकास का यही पक्ष आधुनिक काल एवं आधुनिक पूर्व तोकुगावा काल में अंतर को दर्शाता है। आमतौर पर विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि जापान का आधुनिकीकरण तो मेजी पुनः स्थापन से ही आरंभ हो गया था, लेकिन आधुनिक आर्थिक विकास 1885 में ही शुरू हुआ, क्योंकि 1868 से 1885 तक के समय को संक्रमण काल ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। 1870 के दशक के अंत तक जापान में मुद्रा स्फीति बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने एकदम अनेकों कार्यक्रम आरंभ कर दिए थे और इससे मुद्रा स्फीति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जापानी वित्त मंत्री मत्सुकाता ने ऐसी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक कदम उठाए। उसे इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और 1885 तक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई। अब जापान का आर्थिक विकास बिना किसी रुकावट में के होने लगा। इस प्रकार 1885 को आधुनिक आर्थिक विकास का प्रारंभिक वर्ष माना जाता है। तोकुगावा विरासत, तोकुगावा हेरिटेज। मेजी पूर्व तोकुगावा काल की 2.5 शताब्दियों में जो घटनाएं घटी, उनमें से कई का फायदा मेजी पुनः स्थापन के बाद जापान को अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रम में हुआ। एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र होने के बावजूद तोकुगावा काल में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ। मंदिरों ने अपने स्कूलों द्वारा देश भर में साक्षरता को बढ़ावा दिया। यदि एक विकासशील देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा साक्षर हो तो उसके कई विशेष लाभ होते हैं। ऐसी दशा में नए विचारों एवं तकनीकों का प्रसार अधिक आसानी से हो जाता है। जापान में 1890 के दशक से ही अखबारों में अपने लेखों द्वारा किसानों ने नई तकनीकों की मदद से पैदावार बढ़ाने के ढंगों के बारे में लिखना आरंभ कर दिया था। इन लेखों को पढ़कर दूसरे किसानों ने अपनी पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए। यह इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि बड़ी संख्या में किसान लिखना पढ़ना जानते थे। मेजी पुनः स्थापन के समय लगभग 40% पुरुष और 15% महिलाएं पढ़ना लिखना जानते थे। शायद यही कारण था कि जापान में एक प्रकार की हरित क्रांति का जन्म हुआ। एक अन्य क्षेत्र जो आधुनिक आर्थिक विकास प्रारंभ होने तक काफ़ी विकसित हो चुका था, वह था सिंचाई व्यवस्था। तोकुगावा काल में सिंचाई व्यवस्था तथा बाढ़ नियंत्रण की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया था। सिंचाई के क्षेत्र में चूंकि काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और पहले से ही काफ़ी लंबे समय तक सिंचाई व्यवस्था पर धन लगाकर उसे काफ़ी विकसित किया जा चुका था, मेजी काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई व्यवस्था से बहुत लाभ हुआ। संक्रमण काल 1868 से 1885। मेजी पुनः स्थापन से 1885 तक के समय को संक्रमण काल माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीयकरण ने राष्ट्र को एकीकरण में काफ़ी मदद की। तोकुगावा काल के विभिन्न सामंती प्रतिबंधों को हटा दिया गया। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी रुकावट के आ जा सकते थे और अपनी पसंद का व्यवसाय अपना सकते थे। पहले के चार वर्गों समुराय, कृषक, कारीगर एवं व्यापारी, जिनमें समाज विभाजित था, को खत्म कर दिया गया। अब सामाजिक मेल मिलाप पर भी कोई बंधन नहीं था। पहले दिए गए विशेषाधिकारों को भी वापस ले लिया गया था और अब सभी जापानियों को राष्ट्र के सम्मुख एक समान माना जाता था। सब एक समान अधिकार प्राप्त थे और अब कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता और निपुणता के आधार पर ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार योग्यता पर आधारित आधुनिक समाज की उत्पत्ति हुई। इस काल को संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान विभिन्न सामंती संस्थाओं को खत्म करके उनकी जगह समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अनेकों आधुनिक संस्थाओं की नींव रखी गई। दूसरे सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाने के कारण सरकारी व्यय अचानक बहुत बढ़ गया। इस कारण मुद्रा अधिक मात्रा में छापनी पड़ी, जिससे मुद्रा स्फीति की समस्या पैदा हो गई। 1881 से 1885 के बीच वित्त मंत्री मत्सुकाता द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के फलस्वरूप जापान की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुई। इसलिए जापान के आधुनिक आर्थिक विकास का आरंभ 1868 के मेजी पुनः स्थापन की जगह वर्ष 1885 से माना जाता है। एक आधुनिक राष्ट्र की साधना के लिए आधुनिक व्यवस्था पर आधारित योजना अत्यधिक आवश्यक थी। प्रत्येक वर्ष एक उचित बजट बनाने की जरूरत थी, जिसमें होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा दिया हो। इसके लिए उचित राजस्व प्रणाली का होना जरूरी था। इस काल में सरकारी आय का लगभग 85% भाग भूमि कर से प्राप्त किया गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण की योजनाएं काफी हद तक कृषि क्षेत्र से होने वाली आय पर निर्भर थी। सरकार को एक स्थिर राजस्व की आवश्यकता थी, ताकि वह अपने विभिन्न प्रकार के खर्चों का अंदाजा लगा सके। परंतु भूमि कर के अस्थिर होने की दशा में ऐसा संभव नहीं था। भूमि कर नकद की बजाय अनाज के रूप में चुकाया जाता था। कर की दर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न थी, और वह बढ़ती घटती पैदावार के आधार पर निर्धारित की जाती थी। इसके कारण भूमि कर का सही अंदाजा लगाना मुश्किल था, और फलस्वरूप सरकारी आय में भी भारी उतार चढ़ाव आता था। इसके दो मुख्य कारण थे। फसली भूमि का आकार प्रत्येक वर्ष घटता बढ़ता रहता था, और भूमि कर पैदावार पर आधारित होने के कारण घटता बढ़ता रहता था। इस वजह से जब चावल के रूप में तय किए गए भूमि कर का भुगतान नगद के रूप में करवाया जाता था, तो वह बदलती कीमत के कारण घटता बढ़ता रहता था। चूंकि सरकारी आमदनी घटती बढ़ती रहती थी, इसलिए सरकार के लिए अपने आधुनिकीकरण की योजनाएं उन पर होने वाले व्यय का सही कार्यक्रम बनाना कठिन हो गया था। अब सबसे अधिक आवश्यकता एक स्थिर और आधुनिक कर प्रणाली की थी। भूमि कर सुधार का उद्देश्य एक व्यवस्थित वित्त प्रणाली कायम करना था। अब भूमि कर का भुगतान अनाज की बजाय नकद करना शुरू कर दिया गया। वार्षिक कर की दर भूमि की निर्धारित कीमत का 2.5% भाग तय कर दिया गया, क्योंकि भूमि की कीमत में कोई विशेष तब्दीली नहीं आती थी। इसलिए भूमि कर से होने वाले सरकारी आय का सही अंदाजा लगाया जा सकता था। इस काल में करदाता को कानूनी तौर पर भूमि का मालिक बना दिया गया। अब लोग भूमि को खरीद और बेच सकते थे, जबकि तोकुगावा काल में ऐसा संभव नहीं था। इस प्रकार निजी संपत्ति व्यवस्था का जन्म हुआ, जो पूंजीवाद को मूलभूत आधार प्रदान करती है। तोकुगावा काल से विरासत में मिली मुद्रा व्यवस्था आधुनिकीकरण के लिए उचित नहीं थी। स्थानीय सरकारें अपने अपने सिक्के लागू करती रहती थी। वस्तुओं की कीमतें विभिन्न क्षेत्रों में सोने या चांदी के रूप में तय की जाती थी। मेजी सरकार मुद्रा व्यवस्था में एकीकरण लाना चाहती थी, इसलिए केंद्रीय नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता थी। 1871 का मुद्रा सुधार, मॉनेटरी रिफॉर्म ऑफ 1871, इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर किया गया था। देश भर के लिए अब एक ही तरह की मुद्रा लागू कर दी गई। केंद्रीय सरकार ही अब नोट छाप सकती थी। 1885 तक मत्सुकाता की नीतियों ने मुद्रा स्फीति, जिसने भयानक रूप धारण कर लिया था, पर काबू पा लिया, और अब एक आधुनिक किंतु रूढ़िवादी मुद्रा व्यवस्था का आरंभ हुआ। आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए यातायात, संचार और ऊर्जा जैसी आधारभूत सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। इस काल में सरकार ने विभिन्न नगरों के बीच रेलवे लाइनें बिछाई। 1872 में बनाई गई पहली रेलवे लाइन 18 मील लंबी थी। 1885 में यह बढ़कर 212 और 1889 में 580 मील हो गई। समुद्री यातायात को सुचारू रूप देने के लिए पश्चिमी देशों से समुद्री जहाज खरीदे गए। रेलवे और समुद्री जहाजरानी ने आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया। बाजारों को विस्तृत किया गया तथा यातायात में सुधार होने से स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिला। 1871 में डाक तार व्यवस्था की शुरुआत से आधुनिक संचार प्रणाली का जन्म हुआ। 1885 के अंत तक जापान में लगभग 5,000 डाकघर खुल चुके थे। इन डाकघरों द्वारा 10 करोड़ से भी अधिक पत्रों तथा डाक से संबंधित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। जापान के सभी भागों में तार घर खोल दिए गए, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 30 लाख संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कुछ विशेष कदम भी उठाए। सरकार ने शोगुनों के अनेकों उद्योगों को अपने हाथों में लेकर उनका आधुनिकीकरण किया। पश्चिमी देशों का अनुसरण करते हुए सूती बुनाई की मिलें लगाई गई। विदेशों से महंगी मशीनों को खरीदकर सरकार ने इन्हें उद्यमकर्ताओं को सस्ते दामों और वह भी किस्तों पर दे दिया। पश्चिमी तकनीक पर आधारित कुछ आदर्श कारखाने भी लगाए गए, ताकि लोगों को उनके फायदे मालूम हो जाएं। इस प्रकार उद्योगों के आधुनिकीकरण के आरंभ में सरकार ने उद्योगपतियों की काफ़ी मदद की। इस काल में सरकार ने विदेशी व्यापार की ओर भी काफ़ी ध्यान दिया। सरकार पश्चिम से विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनों, व्यापारिक जहाज़ों तथा हथियारों से संबंधित मशीनों का आयात करती थी। इन सभी का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता था। विदेशी मुद्रा की कमी थी और इस कमी को पूरा करने के लिए जापानी सरकार ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करने की ओर अपना ध्यान लगाया। चाय, रेशम और चावल निर्यात की मुख्य वस्तुएं थीं। यद्यपि इस काल में विदेशी व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, तथापि आने वाले काल की तुलना में यह कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब तो यह एक विस्फोटक ढंग से बढ़ा। इस काल में कृषि ने उद्योगों के विकास में काफ़ी लाभदायक योगदान दिया। अधिकतर राजस्व भूमि कर के रूप में ही प्राप्त किया जाता था। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सका। हालांकि खाद्य पदार्थों की खपत भी ज़्यादा होने लगी थी। कृषि विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक अहम स्रोत थी। रेशम और चाय निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। इस विदेशी मुद्रा का प्रयोग औद्योगिक यंत्रों को आयात करने में किया जाता था। जापानी सरकार द्वारा औद्योगिकी को इतना अधिक प्रोत्साहन देने का कारण पश्चिम का खतरा था। जापान असमान संधियों के अंतर्गत आ जाने के फलस्वरूप एक उपनिवेश नहीं बनाना चाहता था। चीन की तरह अर्ध उपनिवेश बनने की संभावना भी जापान को काफ़ी चिंतित कर रही थी। जापान ने महसूस किया कि यदि वह पाश्चात्य दबाव से बचना चाहता है, तो उसे अपनी सेना को शक्तिशाली और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। इस प्रकार शक्तिशाली बनकर वह पश्चिम का मुकाबला कर सकेगा, लेकिन तीव्र गति से शक्तिशाली बनने के लिए उसे पश्चिमी तकनीकी विधियों को अपनाना होगा। औद्योगिकीकरण को तीव्रता से बढ़ाने का एक और भी कारण था असमान संधियों के अंतर्गत जापान पश्चिम से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक शुल्क वसूल नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा की क्षति हो रही थी और जापानी उद्योगों को भी खतरा पैदा हो गया था। इस प्रकार की दशा से निपटने के लिए जरूरी था कि जापान अपने स्वयं के उद्योगों का तीव्रता से आधुनिकीकरण करे, ताकि उसकी अपनी वस्तुएं पश्चिम की सस्ती व अच्छी किस्म की वस्तुओं का मुकाबला कर सके। तीव्र विकास का काल, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, 1885 to 1918। जापान की आर्थिक आधुनिकीकरण का आरंभ आमतौर पर वर्ष 1885 से लिया जाता है। इस दौर का अंत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही 1918 में हुआ। इस काल में जापानी अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त तरक्की की और दोनों क्षेत्रों, उद्योग और व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। इस काल में जापान ने दो युद्ध जीते, पहला 1894 से 95 का चीन जापान युद्ध और दूसरा 1904 से 5 का रूस जापान युद्ध। रूस को पराजित करने के बाद जापान की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। मेजी पुनः स्थापन से पहले ही की गई असमान संधियां भी अब रद्द कर दी गई। जब आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शेयरों में उतार चढ़ाव आने लगते हैं, तो इस दशा को अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन का सूचक माना जाता है। जब किसी राष्ट्र का आधुनिकीकरण तीव्र गति से होता है, तब राष्ट्र अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की मात्रा में होते परिवर्तन को देखने से ही आर्थिक विकास की गति को मापा जा सकता है। जापान जैसे देश के लिए जो 1885 से 1918 के दौरान आधुनिक आर्थिक विकास के आरंभिक पड़ाव में था, मौलिक उद्योगों में से कृषि प्रधान क्षेत्र था। विकास के इस पड़ाव में उत्पादन उद्योग एक ऐसा अहम उद्योग है जिसके विकास पर एक नज़र डालना बहुत जरूरी है।